लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह स्वतः को सुसमाचार के प्रकाश में नवीकृत करने की कृपा और शक्ति प्राप्त कर सके। आमेन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक पादर कांस्टेंट लेबन्स एवं छटनागपुर में कार्तिक कलीसिया के विकास पर चर्चा में आगे बढ़ रहे हैं। श्रोताओं, पिछले कार्यक्रम में हमने मिशन की स्थिति में बदलाव आने के कारण फादर लेबस की मानसिक वेदना और नए मिशन सुपीरियर फादर बोर्डसन के निधन की दुखद खबर सुनी थी। आज हम स्वस्थ होने की उम्मीद से फादर लेबस के बेल्जियम वापसी के बारे सुनेंगे, तो आइए आगे सुनते हैं। फादर लेबस बीमार अवस्था में भी मिशन से जुड़े रहे। नए मिशन सुपीरियर फादर बोर्डसन के निधन के बाद उन्होंने देखा कि मानवीय दृष्टिकोण से मिशन ध्वस्त हो रहा था और केवल ईश्वर इसे बचा सकते थे। फादर लेबस की बीमारी बढ़ती जा रही थी और उन्हें मिशन कार्य से पूरी तरह अलग कर दिया गया था। खांसी के कारण बहुत अधिक परेशानी झेलने के बावजूद वे कभी कभी थोड़ा काम करने के लिए डेरा चले जाते थे, किंतु अधिकतर समय वे अपने कमरे के बरामदे में बैठकर व्यतीत करते थे और अपने कुछ साहित्यिक कार्यों में व्यस्त रखते थे। उनकी उराव भाषा में नए और पुराने व्यवस्थान के इतिहास पर लिखी किताब की तिथि इन्हीं दिनों की है। इसके हर अध्याय का अंत एक गीत से हुआ है जो देशी धुन में है। इस बीच गले का सूजना लगातार बढ़ता जा रहा था, किंतु वे अपने कमजोर होते शरीर को आत्मसंयम के द्वारा नियंत्रण में रखे हुए थे। इसके बावजूद उन्होंने अपने उत्साही स्वभाव को बनाए रखा और संघर्ष करते रहे। यह एक अत्यंत कठिन संघर्ष था। जब ग्रीष्म में उनकी स्थिति बदतर होने लगी और उन्हें पूरा दिन बिस्तर पर बिताना पड़ रहा था, तब काम के वास्ते आने वाले आगंतुकों को निर्दयता से रोक दिया गया। इस घनी होती अंधेरी रात को अगस्त में एक हल्की रोशनी दिखाई दी, जब डॉक्टरों ने सलाह दी कि तुरंत बेल्जियम लौटने से स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है। नई उम्मीद ने फादर लेबस का दिल भर दिया। वे इस दिन के सहारे पुनः विश्वास करने लगे कि स्वास्थ्य लाभ संभव है और खुद को यकीन दिलाने लगे कि सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। इस तरह फादर लेबस बेल्जियम लौटने के लिए तैयार हो गए। जब वे यात्रा के बारे सोच रहे थे, तभी बारवे से कुछ उड़ाव आए। वे फादर लेबस से मिलना और उन्हें देखना चाहते थे, किंतु बहुत कमजोर होने के कारण फादर लेबस उनसे नहीं मिल सके। वे भावुक होकर जोर से बोलने लगे, जिससे बाहर उत्सुकता से मिलने का इंतजार कर रहे लोगों ने स्पष्ट सुन लिया। वे कह रहे थे, कृपया इन बेचारे लोगों को बतला दीजिए कि मैंने इनके ही कल्याण के लिए अपना स्वास्थ्य बिगाड़ा है और मैं इस समय दूर हूँ ताकि फिर उनकी मदद कर सकूँ। फादर लेबस ने प्रोविंशियल से आग्रह किया कि उन्हें वापस बेल्जियम बुलाया जाए। आग्रह को तुरंत सुन लिया गया और बेल्जियम से फादर हेगनबेक के लिए प्रोविंशियल का एक तार मिला कि फादर लेबस को ब्रसेल्स भेजा जाए। खबर मिलते ही बिना देर फादर लेबस को कलकत्ता रवाना किया गया। रांची से विदा होते उन्होंने उन सभी क्रिश्चियनों को आशीष दी जो उन्हें देखने आए थे। उन्हें देखकर वे रो पड़े। उन्हें ठेला गाड़ी से 26 अगस्त को पुरुलिया पहुंचाया गया, जहां से वे ट्रेन द्वारा यात्रा करते हुए 28 अगस्त को कलकत्ता पहुंचे। फादर हेगनबेक ने बड़े स्नेह से फादर लेबस का स्वागत किया, किंतु उन्हें बीमारी से स्वस्थ होने की अधिक उम्मीद नहीं दिला सके। 1 सितंबर 1892 को फादर लेबस कलकत्ता से नेपल्स के लिए रवाना हुए। उनके साथ ब्रदर काइतर्स भी थे। फादर लीबेंस और ब्रदर काइटस दोनों 12 साल पहले एक साथ एक ही जहाज से भारत पहुंचे थे। वे 2 सितंबर 1892 को नेपल्स पहुंचे। वहां उन्हें 4 दिन रुकना पड़ा। फादर लीबेंस खुश थे क्योंकि वे वहां मिस्टर बलिदान चढ़ा पा रहे थे। वहीं रहते हुए इलाज की कोशिश शुरू हुए और नेपल्स के डॉक्टर की सलाह पर फादर लीबेंस रोम आ गए, किंतु यहाँ के डॉक्टरों ने भी बेल्जियम जाने की ही सलाह दी। फादर लीबेंस किसी तरह ठीक होकर भारत लौटना चाहते थे ताकि अपने काम को आगे बढ़ा सकें। अतः उन्होंने डॉक्टरों की सलाह मानी और रोम से बेल्जियम रवाना हुए। 12 साल 1 सप्ताह के बाद वे पुनः उसी घर में लौट गए जहाँ से वे भारत गए थे। ड्रोंजेन में वे कई पुराने साथियों से मिले। फादर लीबेंस ने जिनके साथ येसु समाज के प्रथम वर्ष का प्रशिक्षण पूरा किया था, अब वे टर्नशिप कर रहे थे, जबकि फादर लीबेंस 36 साल की उम्र में अपनी दौड़ पूरी कर ली थी। फादर लीबेंस स्वास्थ्य केंद्र में रखे गए। वहां रहते हुए उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, नेपल्स में मैं प्रतिदिन मिसा कर सकता था, यहाँ शायद ही कर सकता हूँ, किन्तु मैं रोज परम प्रसाद ग्रहण कर सकता हूँ। मैं इस शरद ऋतु में हमारी संस्था पर अध्ययन कर रहा हूँ। इस तरह उन्होंने अपने दिनचर्या में विश्राम, प्रार्थना और अध्ययन के लिए समय बांटा। इस बीच फादर प्रोविंशियल, उनके परिवार के सदस्य और अन्य मित्र उनसे मिलने आए, फिर भी उनका अकेलापन बना रहा। 150 जेसुइटों के बीच रहकर भी वे समुदाय की घंटी बजने, काम अथवा भोजन के लिए एक साथ आने के संकेत मिलने के अलावा कुछ नहीं सुन सकते थे। दूसरी चीजें मोटी दीवार को पार कर उनके पास नहीं पहुंच पाती थी। फिर भी फादर लीबेंस ने इस एकाकीपन को स्वीकार कर लिया और अपने समय को अध्ययन करने और प्रार्थना में व्यतीत करने लगे। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लीबेंस एवं छोटे नागपुर मिशन की शुरुआत पर एक चर्चा सुन रहे थे। इस पर हम चर्चा आगे भी जारी रखेंगे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका सखी सहेली। लेखिका है समता बोरेकर। श्रोताओं, जीवन में सभी खुश रहना चाहते हैं। हर किसी की कामना रहती है कि उसका परिवार खुश रहे। हर माँ की दिली तमन्ना रहती है कि वह अपने बेटे के लिए सुंदर, पढ़ी लिखी, अच्छे संस्कारों वाली सुशील बहू ढूंढकर बड़े धूमधाम से शादी कराएगी। पर यदि बेटा अपनी माँ की पसंद की लड़की को ठुकराकर अपनी पसंद की लड़की से ब्याह कर ले तो सास बहू की छोटी छोटी गलतियां निकाल कर ताने मारने से बाज नहीं आती। इस नुक्ताचीनी और खटपट से बचने के लिए बहुएं ज्यादातर मायके में रहना पसंद करती हैं या पति के साथ कहीं और रहने की जिद कर लेती हैं। अगर रेणु जैसी ननद को सरिता जैसी भाभी मिले तो थोड़ी समझदारी और सूझबूझ से रेणु को अपनी गलती का एहसास कराते हुए उसे अपने ससुराल में खुशी से रहने की सीख देकर परिवार में खुशियां लाने में सफल हो जाती हैं और सास का नजरिया भी बदल जाता है। तो आइए सुनते हैं समता बोरेकर की लिखी नाटिका सखी सहेली।
अरे वाह आंटी, ओ आंटी,
आज तो बड़ी खुश नजर आ रही हैं आप। कोई लॉटरी तो नहीं जीत ली आपने?
अरे सरिता सुन, कौशल की बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लगी है। सुबह से नाच रहा है पता, हंसते हुए, कमाने लग गया है, पर बचपन वही का वही।
तो आंटी आप कौन सा पीछे हैं उनसे? अरे आप भी तो खुद ही के गाने पे खुद ही थिरक रही हैं। अच्छा आंटी, यूं कोरी कोरी खबर नहीं चलेगी? हाँ मिठाई खाऊंगी मैं तो।
अरे तो दौड़ के आना, अरे आजा जल्दी से। तेरे घर की छत और मेरे घर की छत में बस एक मुंडेर का ही तो फासला है, अरे आजा।
अरे आंटी मैं तो अभी आ जाऊं तुरंत दौड़ के, लेकिन ना बहुत सारे काम बाकी हैं। अरे अगर हम सखी सहेली बैठ गई ना तो 2 घंटे की छुट्टी हो जाएगी। अच्छा मैं ना शाम को आती हूँ। और आंटी वो कौशल भैया को मेरी तरफ से बधाई दे देना।
अच्छा ठीक है, अरे मगर आना जरूर।
हाँ आंटी,
और तेरा काम बस यही खत्म नहीं हो जाएगा? अरे सुन, मुझे मेरे कौशल के लिए एक प्यारी सी बहू भी तो ढूंढनी है, और इस काम में तुझे मेरा साथ देना पड़ेगा, समझी?
हाँ ठीक है,
अपनी सास को बोल देना और बाद में नानुकुर नहीं करना, समझ गई?
ठीक है आंटी। क्या बात है आंटी, बड़ी बुझी बुझी से लग रही हो आज, तबीयत तो ठीक है ना?
हाँ अब क्या बताऊं सरिता, मेरे तो सारे सपने ही टूट गए।
अरे
हाय, क्या क्या मन को आस थी, कितना कुछ सोच रखा था, लेकिन सब मिट्टी हो गया। अरे सब मिट्टी हो गया।
अरे अरे आंटी ऐसी बातें क्यों कर रही हो जैसे सारी दुनिया ही उजड़ गई।
अरे सरिता अब क्या बताऊं, कल एक बड़ा अच्छा रिश्ता आया था।
हाँ?
अपने कौशल के लिए।
अच्छा?
मैंने उसको बुलाया और उससे पूछा कि बेटा एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है तेरे लिए, लड़की भी बहुत सुंदर है, सुशील है, गुणवान है, तेरे साथ उसकी जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी, क्या बात आगे चलाऊं? उस पर कौशल बोला,
माँ वो जमाने गए जब लड़की देखने दिखाने का रिवाज चलता था। अरे आज दुनिया फॉरवर्ड हो गई है, मॉडर्न हो गई है, आप कब समझेंगी और इन दकियानुसी रस्मों रिवाज से बाहर कब निकलेंगी? देखो भाई मैं आपको साफ साफ बता दूं, मैं एक लड़की को प्यार करता हूं और शादी भी उसी से करूंगा।
अब सरिता तू ही बता, जाने किस जात की होगी, किस बिरादरी की लड़की ले आएगा घर में, अरे घर परिवार खानदान कैसा है? पहले के जमाने में घर परिवार रिश्ता देखने के बाद ही सब कुछ तय होता था। अच्छा चलो ठीक है, अब दान दहेज की बात हम ना करें, पर लड़की के गुण तो देखना ही पड़ेगा ना, है कि नहीं?
अरे तो आंटी क्या नाम भी नहीं बताया? अरे साथ में पढ़ी हुई है, कॉलेज की फ्रेंड है या नौकरी में साथ काम करती है? अरे कुछ तो बताया होगा ना कौशल भैया ने?
अरे नहीं नहीं अभी तक तो कुछ भी नहीं बताया, आज पूछूंगी उससे तभी मुझे पता चल पाएगा कि असली बात क्या है। अरे कौशल, अरे एक बार में बोलता क्यों नहीं है कि वो लड़की कौन है जिसने तुम पर डोरे डाल रखे हैं?
अरे माँ वो लड़की आपकी देखी भाली है, आप उसे अच्छे से जानती हैं, इसलिए इतना उतावलापन ठीक नहीं है।
अरे कौन है तो बताता क्यों नहीं है?
माँ वो लड़की है हमारे पड़ोस में रहने वाली रेणु।
रेणु?
हाँ माँ रेणु। रेणु और मैं बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं और बहुत पहले ही हमने एक दूसरे के साथ शादी करने का वादा कर लिया था।
कैसे हो?
अरे कौशल भैया ने कुछ बताया कि कौन लड़की है, क्या नाम है, करती क्या है, कहाँ रहती है। अरे कुछ तो बताओ ना आंटी। आंटी? अरे मैं आपसे बात कर रही हूँ। अरे ओ आंटी, अरे क्या बात है?
तुझे पहले से पता था कि तेरी ननद रेणु से मेरे कौशल का चक्कर चल रहा है?
हाँ?
और फिर भी मेरे साथ तू अनजान बनी रही, तूने कभी बताया ही नहीं मुझे।
अरे आंटी ये क्या बात कही आपने, रेणु दीदी, हे भगवान, इस बात की भनक तो घर में भी नहीं है। ओहो अब मैं क्या करूं आंटी, ये तो मेरी मुश्किल हो गई है। आप सच तो कह रही है ना, आपने ठीक से नाम तो सुना था ना?
सरिता भाभी ये बात सच है कि आपको या घर के किसी भी सदस्य को इस बारे में कोई जानकारी नहीं?
हाय।
लेकिन ये भी उतना ही सच है कि अगर मैं किसी से शादी करूंगा तो वो है रेणु, और रेणु अगर किसी से शादी करेगी तो वो हूं मैं यानी कौशल। और जब आपको पता चल ही गया है तो अब बाकी बातें करने का काम आपको सौंपते हैं।
क्या?
सरिता तुम लोगों ने रेणु को कुछ सिखाया ही नहीं है।
हाँ?
अब देखो ना, किचन का एक भी काम उसको नहीं आता है, यहाँ तक कि रोटी बेलना तक नहीं आता उसको। एक तो घर में रहती नहीं है, सारा दिन जब देखो मायके में पड़ी रहती है। अरे कुछ समझाओ उसे, ऐसे कैसे काम चलेगा, या तो फिर उसे शादी नहीं करनी थी।
माँ माँ वो आपसे एक बात करनी थी। वो क्या है कि दरअसल रेणु और मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ, तो मैं सोच रहा था कि ऑफिस के क्वार्टर में शिफ्ट हो जाऊं, मतलब अगर आप अनुमति दें तो।
कौशल तू हमसे अलग होने की बात कर रहा है? अरे ऐसा तूने सोचा भी तो कैसे सोचा? अरे तू ही तो हमारा एक बेटा है, और तेरे बिना हम कैसे रह पाएंगे। अरे ये आज कौन सा रूप दिखा रही है? रेणु घर में फूट फूट कर रो रही थी और कह रही थी कि भाभी भैया और बच्चों को लेकर अलग होने की जिद कर रहे हैं। अरे तू तो इतनी सुशील है, लोग तेरी तारीफ करते थकते नहीं, और ये क्या रंग दिखा रही है तू? अरे बेटा समझदारी से काम ले, परिवार में साथ रहने में ही सबकी कुशलता है, सबको उसी में खुशी मिलती है। और रेणु बहुत परेशान है बेटा, बता रही थी कि उसकी माँ तो बीमार पड़ गई है। अरे तुझे तकलीफ क्या है, इतने सालों से सब ठीक ठाक तो चल रहा है।
मेरी छोड़ो आंटी, और ये बताओ कि अब रेणु दीदी का व्यवहार कैसा है? हाँ, अरे घर में सबसे ठीक से घुल मिलकर काम कर रही है कि नहीं?
अरे सरिता अब तो वो बहुत अच्छी हो गई है।
हाँ?
और मैंने सोचा भी नहीं था कि वो इतनी अच्छी हो जाएगी। सबसे बिल्कुल मिलकर रहती है, हंसती रहती है, और हंस हंस के पता है घर का सारा काम भी कर लेती है। मुझे कोई काम भी नहीं करने देती। सरिता मैं तो उससे बहुत खुश हूँ, इतनी अच्छी बहू पाकर। थोड़ी सी नादानी थी उसमें, है ना, अब तो बिल्कुल समझदार हो गई है, मैं तो बहुत खुश हूँ उससे।
तो मतलब इसका ये हुआ आंटी कि मेरी तरकीब काम कर गई। तरकीब ये थी कि मैंने यही प्लान किया था।
अच्छा?
जैसे वो आपके घर में मेरी ननंद दीदी काम करती है ना, वैसे ही मैं अपने घर में काम करूं और उनको ये एहसास दिलाऊं कि वो कितना गलत कर रही है। और देखो मेरी तरकीब काम कर गई।
अरे वाह सरिता, तुमने तो कमाल कर दिया।
अरे आखिर हम सखी सहेली ऐसे ही थोड़ी ना है।
सखी सहेली, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार हैं संतोष जोशी, समता बोरेकर और भवानी कौल। इंदौर के सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।